रब्बुकुम आलमु बिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, वो खूब जानता है तुमको। इयशा यरहमकुम और इयशा युआद्दिबकुम, वो अगर चाहे तो रहम करे तुम पर और चाहे तो अजाब दे तुम्हें। अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता है। अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में भी फरमाया, ला यालमु मन खलक, क्या वो ही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया तुम्हें? और सिर्फ पैदा ही नहीं किया, वो लतीफुल खबीर, वो तो बड़ा बारीक भी है, बाखबर भी है, तो वो कैसे नहीं जानेगा? वो जानता है। तो इसके रवैये क्या है, कौन क्या बातें करता है, दीन के मामले में भी जो कोई बात भी की जाती है उसको भी जानता है। तो अब इसका मतलब हमें कोई कितना भी इंस्टिगेट करे, उभारे इस बात के ऊपर कि हम कोई गलत बात करें, लेकिन हमने जज्बात में आके आपे से बाहर नहीं हो जाना। और भाई ये नहीं कहना नहीं इसने मुझे गुस्सा दिलाया था, ये नहीं करना, क्योंकि उसने गुस्सा दिलाया था या नहीं दिलाया था उसकी वो बात उसके साथ है, हमने जो काम किया वो हमारे साथ है। हम उसके ऊपर इल्जाम थोप के खुद बरी जिम्मा नहीं हो सकते। यशा यार हमको, अल्लाह ताला चाहे तो वो रहम करे और चाहे तो अजाब दे, ये किस बारे में? इससे कुम से मुराद कौन है? इसके तीन मफहूम बताए हैं मुफसरीन ने। पहला ये कि ये अमूमी तौर पर सारी इंसानियत है, चाहे मुसलमान है या काफिर है, अल्लाह ताला जिसको चाहे अजाब दे, जिसको चाहे चाहे रहम करे। दूसरा माना ये कि मुशरिकीन मक्का हो सकते हैं, अल्लाह ताला खूब जानता है कि वो क्या रवैया अपना रहे हैं, लिहाजा अल्लाह ताला चाहे तो उन पर रहम करे कि उनको इस्लाम की तौफीक दे दे और उनको फिर बख्श दे, और चाहे तो उनपे अजाब करे कि उनसे तौफीक छीन ले। और तीसरा यह है कि अहले ईमान को खिताब है, यहां रहम की बात यह है कि चाहे तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला रहम नाजिल करे और उनमें गलबा अता फरमा दे इस माहौल में भी जहां पे कुफर है हर तरफ, और ये अजाब में मुबतला करे कि काफरों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दे, तो ये अजाब ही की एक शक्ल हो गई। हमा अरसलना का अलैहिम वकीला, और नहीं भेजा हमने आपको इन पे दारोगा। इस जुमले से पता चल रहा है कि ज्यादातर यहाँ पे ये है कि ये कुफारे मक्का की बात हो रही है, जिनके साथ मुसलमानों का इंटरेक्शन चल रहा था ना, और मुसलमानों को चाह रहे थे कि उनको कुछ यानी इनके ऊपर कुछ उनको कोई इख्तियार दिया जाए, उनको इजाजत दे दी जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करेंगे, जब इनको बताएंगे, तो इनसे इनके आगे ऐसे रवैये भी होंगे, मुखालफत वाले भी होंगे, नहीं भी मानेंगे, गुस्सा भी दिलाएंगे, बुरी बातें भी करेंगे, प्रोपोगेंडाज भी करेंगे। तो आप इनके ऊपर वकील नहीं है, आप इनके ऊपर दारोगा नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा जाना कि ये क्यों नहीं मुसलमान हुए, हाँ आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि आपने आसान तरीके से दावत दी थी या नहीं, याद रखिए, ठीक है? ये नहीं पूछा जाना कितने आपने जिंदगी में मुसलमान किया लोगों को, कितने लोग आपके हाथ पे इस्लाम लेकर आए हैं, शहादा लिए, ये जरूर पूछा जाएगा आपने कितने लोगों को आसन तरीके से दावत दी है, दावत नहीं सिर्फ आसन तरीके से। और रब्बु का आलम बिमन फिस समावाती वल अर्थ, और रब तेरा खूब जानता है जो भी आसमानों में है और जमीन में है, वो गाफिल नहीं, वो उसको नींद नहीं, ऊंग नहीं, मखलूक से वो बेखबर नहीं है, वो खूब जानता है सारी मखलूक को जो आसमानों में और जो जमीन में। एक को देखना उसको दूसरे से गाफिल नहीं करता, वो जानता है मखलूक में कौन है जो ईमान लाने वाला है, कौन है जो नहीं ईमान लाएगा, किसकी क्या फजीलत है, कौन नेकियां करने वाला है, किसमें खूबियां ज्यादा है, किसमें खराबियां क्या है, उसके अंदर सलाहियत कितनी है, किसकी मजबूरियां क्या हैं, किसकी मजबूरियां नहीं है और सिर्फ बहाने हैं, किसकी अखलाक क्या है। वलकद फद्दलना बाद नबीन आला बाद आतीना दाऊदा ज़बूरा, और खास तौर पे यहाँ पे इसलिए कहा गया कि मुशरिकीन मक्का ये एतराज करते थे कि अगर नबूवत मिलनी थी तो किसी बड़े को मिलती, जो ताइफ का कोई सरदार होता, इनको क्यों मिल गई? अल्लाह ताला को बेहतर पता है आसमानों में जमीन में कौन उसकी मखलूक किस काबिल है, वो जानता है किसको उसने नबुवत के लिए चुनना है, किसको उसने अपने दीन की खिदमत के लिए चुनना है। बंदों को नहीं पता होता, मूसा अलैहि सलाम को चुना हालांकि उनकी जुबान में लुकनत थी, हारून अलैहि सलाम बड़े थे, उनकी जुबान साफ थी, फिर भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को चुना। हारून को अलैहिस्सलाम को तो बाद में उनकी दुआ पे चुना ना, पहले नहीं हारून अलैहिस्सलाम को चुना गया। अल्लाह ताला को बेहतर पता है। वो कहते थे ये यतीम है, ये कोई सरदारी इनके पास नहीं, इनको क्यों, तुम्हें क्या पता, अल्लाह को पता है। तो किससे अल्लाह ने काम लेना है ना, ये फैसले हमने नहीं करने, क्योंकि उसके पास वो सिर्फ तो इतना पड़ा हुआ, असल तो उसके पास होना चाहिए ये काम, उसको तो करना चाहिए। उनको तो बड़ा अजीब लगता था, अल्लाह ताला ने इसका जवाब दे दिया। और फजीलत दी बाज को बाज नबियों पर। देखें अब नबियों में बाज को बाज पे फजीलत दी। हमारा काम नहीं है कि हम किसी लोगों को जाकर कहेंगे हमारे नबी की तुम्हारे नबी पे ज्यादा फजीलत है और ऐसे, और इसके ऊपर लड़ाई शुरू कर दे। लेकिन हमें कुरान बताता है कि फजीलतें हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। और हम जानते हैं कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पे फजीलत हासिल है, खैरुल बशर थे, इमामुल अंबिया थे, उनको अल्लाह ताला ने मेराज कराई, उनके अगले पिछले सारी लग्जिशें माफ थी। तो किसी को कोई फजीलत दी, किसी को कोई फजीलत दी, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को खलीलुल्लाह बनाया, किसी को हबीबुल्लाह बनाया। अल्लाह ताला की जैसे चाहत, जैसे उसने समझा वैसे ही किया। इसमें लोगों के मशवरे की जरूरत नहीं। वह आतेना दाऊदा जबूर, और दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर दी। खास तौर पे दाऊद अलैहिस्सलाम का जो जिक्र यहाँ पे आया, इसमें मुफसरी ने डिफरेंट बातें लिखी हुई है। एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि दाऊद अलैहिस्सलाम का कद छोटा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको रसूल बनाया। तो तुम्हारे मशवरे नहीं, अल्लाह ताला जिसको चाहता है नबूवत अता फरमाता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चुना। और हाँ, दाऊद अलैहि सलाम के बारे में ये भी आता है कि दाऊद अलैहि सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को जिहाद की का हुक्म दिया गया, तो दोनों में ये मुश्तरक बात है। और भी कई चीजें हैं जो उनको जबूर में बताई गई। और वो सबसे पहले ये भी आता है कि सबसे पहले जबूर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आपकी तशरीफ आवरी के बारे में बात बताई गई है। जबूर में सबसे पहले ये शवाहिद मिलते हैं। तो बताना ये कि वही जात है जिसने दाऊद अलैहिस्सलाम पे भी जबूर नाजिल की। कुल उद्दीन अजाम तुम मिन दूनी, कह दीजिए तुम पुकारो उनको जिनको तुम गुमान करते हो ना अल्लाह के सिवा, क्या गुमान करते हो कि ये भी कोई इख्तियार रखते हैं, ये भी खुदा है, इनके पास भी पावर्स हैं, जिनको भी तुम गुमान करते हो कि भाई ये हमें कुछ दे सकते हैं, हमारा रिस्क बढ़ा सकते हैं, या तुम्हें समझ आती है कि ये मेरे मसलों को हल करा देंगे, यहाँ पे मैं जाऊंगी धागा बांधूंगी, ये होगी वो होगी, फला यमलिकुना कशफ दुर अनकुम वला तहवीला, तो नहीं वो मालिक हो सकते तकलीफ हटाने के तुमसे और ना बदलने की। वो हटा भी नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते। बदलना मतलब ये कि उसमें कोई कमी कर दें, तकलीफ में कुछ कर दें, कुछ भी नहीं कर सकते। वो कोई मालिक नहीं किसी चीज के भी। तुम पुकार के देख लो इनको, चाहे वो पत्थर के बोते हैं, जिनके पीछे भी तो अकीदा था ना कि ये भी कोई हस्तियां हैं, ऐसे नहीं है, वो इतने पागल तो नहीं थे कि वो पत्थरों के ही आगे झुकने शुरू हो जाते। उन्होंने पीछे कॉन्सेप्ट तो था ना ये कि कोई नेक लोग हैं जिनका जो बड़े अल्लाह के हाँ, जिसको हम कहते हैं पहुंचे हुए हैं, तो इसलिए हम इनको मानते, या ईसा अलैहि सलाम है या फरिश्ते हैं या कोई भी गैर उल्ला, हर एक की नफी कर दी गई कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। हत्ता के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कुराने पाक में ये बात है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया नबी आप कह दें कि अगर मैं मालिक होता किसी नफे ना ना नुकसान का, तो मैं अपने लिए खैर ही सारी रख लेता, मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुंचता। तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के क्या और कोई हो सकता है कि जिसके हाथ में फिर कुछ होता। अगर कुरान में ये बात है उनके लिए, तो किसी और से हम कैसे समझ सकते हैं कि इसके हाथ में कुछ मेरी तकलीफ हटाने का कुछ इख्तियार है। अल्लाह अकबर। उलाइक अल्लदीन यदउना, यही वो लोग हैं जिनको वो पुकारते हैं। यबतहूना इला रब्बिहिम अलवसीला अय्युहुम अक्रब, ये वो लोग हैं जिनको वो पुकारते हैं, वो तो खुद तलाश करते हैं अपने रब की तरफ वसीला के कौन सा उनमें करीब तर है। यानी जिनको ये पुकारते हैं वो हस्तियां तो खुद वसीला तलाश करती हैं, वो हस्तियां खुद अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश करती हैं। यानी जिनको भी ये पुकारते हैं, जाहिर है वो जो नेक लोग हैं, जिनको ये कहते हैं पहुंचे हुए लोग हैं अल्लाह के यहाँ, वो तो खुद अपने रब के नजदीकी की तलाश में रहते हैं कि उनमें से कौन ज्यादा नजदीक हो जाए, अय्युहुम अकरब, के कौन ज्यादा नजदीक हो जाए। हम देखते हैं नबी अलैहिस्सलाम कैसे रातों को खड़े होके नमाज पढ़ा करते थे कि आपके पैर मुबारक सूज जाते थे खड़े हो के, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अगले पिछले सब माफ है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि वसीला, वसीला का मतलब क्या है? वसीला का मतलब है कुर्ब। अब वसीला हम उर्दू में समझते हैं, उर्दू वाला वसीला ना, इसको समझे कि वसीला रास्ता, यानी जो भी रास्ता हम अपनाते हैं किसी तक पहुंचने का, क्योंकि हमने ये जब कॉन्सेप्ट समझा तो हमने कहा फलाने को वसीला बना लो, फलां को वसीला बना लो। वसीला वो है जो अल्लाह ताला से करीब होने वाले आमाल है, इसमें सारे नेक आमाल आ जाते हैं। तो जिनको भी तुम पुकारते हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे नबी हो, चाहे बुजुर्गों औलिया अल्लाह, कोई जिन हो, कोई कुछ भी हो, वो भी अल्लाह ताला की तरफ वसीले की तलाश में रहते हैं कि अल्लाह के कुर्ब उनको हासिल हो जाए और कौन उनमें ज्यादा करीब हो जाए। फरिश्ते तक अल्लाह की तस्बीह करते हैं, फरिश्ते तक अल्लाह से डरते हैं, यरजूना रहमतहू, वो उम्मीद रखते हैं उसकी रहमत की, वो यखाफूना अदाबहू, और वो उसके अजाबों से डरते हैं। यानी जितने भी ये नेक लोग हैं ना, ये जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको, वो वाले नहीं जो ये स्वामी रामी पता नहीं क्या क्या इन्होंने बनाए हुए हैं, वो तो खुद भटके हुए हैं, जो भी पैगंबरों को जैसे बनाया गया या फरिश्तों को बनाया गया, वो तो खुद अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं अपने बारे में भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, हाँ, और मैं भी जन्नत में अल्लाह की रहमत से ही जा सकता हूँ। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि मेरे तो काम इतने हैं, मैं तो नबी हूं, मैं तो जन्नत में जाऊंगा ही जाऊंगा, अब तुम लोगों का नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होता है, लेकिन मैं तो जाहिर है जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा। ये नहीं फरमाया, हदीस में है कि आप ने फरमाया मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, और मेरे फरमाया कि मेरे लिए वसीला की दुआ करो, वो एक मकाम है अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत में जो सिर्फ एक शख्स को मिलेगा, फरमाया मेरे लिए दुआ करो। हम कहते हैं, वो फरमाते हैं मेरे लिए दुआ करो वसीले की, और इसीलिए हम अजान होती है तो उसके बाद दुआ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकामा महमूद की और वसीला की, तो फिर हम कहते हैं हम उनको वसीला बना ले। वसीला मतलब है कि हम नेक वो आमाल करते थे ताकि अल्लाह के करीब हो जाएं, वो तो खुद वसीला तलाश करते थे, तुमने उनको वसीला बना लिया, वो तो खुद नेक आमाल की तलाश में रहते थे, तुमने इसका कोई और ही मतलब ले लिया। तो जो रसूल है, जो अल्लाह के ऑलरेडी इतने करीब होते हैं, वो भी और मजीद कुर्बत की तलाश में रहते, मगर हमने उनका दामन पकड़ लिया, हम तो करीब हैं भी नहीं, तो हम कह रहे हैं कि हम इनका दामन पकड़ लेते हैं, बजाय कि हम भी करीब होने के लिए नेक आमाल करें, बजाय हम भी अल्लाह ताला को पुकारे नेक आमाल करके और अल्लाह ताला तक कुर्बत का रास्ता इख्तियार करें। जिनको ये पुकारते हैं उनकी हालत बताई गई, ये उनकी हालत है, ये तीन काम उनके बताए गए कि जब वो दुनिया में थे ना, तो वो खुद अल्लाह के करीब होने के लिए नेक आमाल की तरफ दौड़ते थे, वो खुद अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखते थे, वो खुद अल्लाह के अजाबों से डरते थे, इवन फरिश्ते अल्लाह के अजाबों से डरते, जबकि उनके तो कोई उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना। अब आपसे सलम ने फरमाया अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते जिनके कंधे अल्लाह के डर से कांपते रहते हैं, अरश के उठाने वाले फरिश्ते अल्लाह से डरते हैं, और वो कहते हैं अल्लाह तू पाक है, जैसे तुझसे डरने का हक है वैसे हम वैसे नहीं डरा जाता हमसे जैसे डरना चाहिए। हालांकि वो इतना डरते हैं, मिराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहि सलाम को देखा था, वो अल्लाह के डर की वजह से पुरानी मश्क की तरह हो गए थे, लेदर बैग की तरह, जैसे ऐसे सुकड़ सा जाता है। जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है तो फरिश्ते सजदे में पड़ जाते, वही ऊपर से आता है ना अल्लाह का हुक्म, तो फरिश्ते सजदे में पड़ जाते हैं, लरसते हैं, कांपने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को जानने वाला हूँ, उसकी यानी अजमत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा और कौन जाना था, और फरमाया मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ। अपनी बेटी को फरमाया, अपनी पप्पी को फरमाया कि तुम दुनिया में मेरे से कुछ ले लो, लेकिन मैं आखिरत में मैं तुम्हारे कुछ काम आने वाला नहीं। वो खुद इतना डरते थे, क्योंकि ना अजाब रबी का कहा ना महदूरा, अल्लाह ताला का अजाब है ही इस लायक के उसमें डरा जाए। हम कितने बेखौफ है ना, हम कहते हैं डराओ ना हमें, हालांकि कुरान कहता है अल्लाह का अजाब इस लायक है कि उससे डरना चाहिए, लोगों को डरना चाहिए इससे, लेकिन हमारे अंदर कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। और वो जितना जिनको हम पहुंची भी हस्तियां समझते वो डरते थे, वो अल्लाह ताला के करीब होने के लिए वसीला तलाश करते थे। अब वसीले से यहां पे बात पता चलती है कि हमें वो वाला जो वसीला बताया जाता है, जी फलाने के वसीले से मांग लो, फलाने के वसीले से मांग लो, वो वसीला नहीं है। वसीला तो हमें जो हदीस में बताया गया, वसीला तो वही होगा ना जो हमें बताया गया, वसीला वही चीज काम वाली होगी जो हमारे नबी ने बता दी। खुद ही बता देना कि वसीला ये है, वसीला वो है, ये तो सही नहीं है। जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी और क्या बता दिया वो हमें, वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना है उससे अल्लाह ताला को पुकारो, ये है वास्ता देना, ये है वसीला लेना उसके नामों के जरिए। फिर नंबर टू ये अपने नेक आमाल का वास्ता दो, उनको वसीला बनाओ, जैसे वो गार वाले लोगों ने बनाया था, हदीस में मौजूद है, इसकी दलील मौजूद है, ये गार वालों के किस्से से उन्होंने अपनी नेकियों का वास्ता दिया था अल्लाह को, इनको वसीला बनाया था, अल्लाह ताला तुझे मेरी ये नेकी अगर पसंद आई हो तो अल्लाह ताला तू इस पत्थर को हटा दे। उन्हें ये तो नहीं कहा था फलाने की नेकी जो फलाने बुजुर्ग ने की है, वो बुजुर्ग इतने नेक है तो उनके सदके हमारा ये काम कर दे, उनके वसीले हमारा ये काम कर दे, मैं तो जो उनका वास्ता देता। वो भाई उनकी नेकियां उनके साथ हैं, वो अपनी नेकियों का वास्ता देते, आप अपनी का देंगे। आप ये कहेंगे मेरा कोई नेक अमल, अल्लाह मैंने ये रोजा रखा, या अल्लाह मैंने ये कयाम किया, या अल्लाह मेरी जो मोहब्बत तेरे रसूल के लिए है ये मेरे अमल है ना, आप अपने अमलों को वास्ता बना सकते हैं। इसी तरह नंबर थ्री, ये किसी भी नेक आदमी है जो मुत्तकी आप जिसको समझते हैं उसको आप दरख्वास्त कर सकते हैं जिंदा को कि मेरे लिए दुआ कर दें। दुआए सालहीन एक जायज किस्म है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी सहाबा आते थे और कहते थे कि हमारे लिए दुआ करें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो उन्होंने जाकर कब्र पे नहीं दुआ मांगी, कब्र पे जाकर खड़ा नहीं होकर कहा कि हमें आपके वसीले से, वो फिर अल्लाह से मांगते थे। या फिर जब बारिश की दुआ करनी थी तो हजरत उमर ने फरमाया, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास को वसीला बनाया, उनकी दुआ को वसीला बनाया कि अब आप दुआ करें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे उनसे हम दुआ के लिए कहते थे, अब आपको हम कहते हैं, यानी नेक और साले अपने से ज्यादा आप जिसको समझते हैं, आप समझते हैं कि ये अल्लाह ताला के हाँ एक बड़ी नेकियां करने वाला आदमी है, तो उसको आप दुआ के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पे कि आप जो दुनिया से जा चुके हैं उनको वसीला बना, जबकि हम तो देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला समी और बसीर है, अल्लाह सबकी सुनता है। हमें ये वाला किसी इंसान को बीच में डालने की जरूरत ही नहीं कि हम हमारी आपकी आगे, आपकी अल्लाह के आगे, ये होता है कॉन्सेप्ट। जब उनको नहीं कह रहे होते कि कहते हम इनसे तो नहीं मांगते, हम तो कह रहे हैं हमारी आपके आगे, आपकी अल्लाह के आगे, ये इसकी जरूरत ही नहीं। जो वसीले के हमें बताया था वही हम करें। आप देखिए सुभान अल्लाह, सहाबा कैसा ईमान था। उस सहाबी के बारे में आता है ना, अबू मुगला नामी जो सहाबी है, उनके बारे में आता है ना, डाकू ने उनको पकड़ लिया, उनसे माल छीन लिया, उन्होंने कहा माल मेरे से ले लो लेकिन मेरी जान बख्श दो, मेरी जान छोड़ दो। उसने कहा जो माल तो मैंने ले ही लिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम जाके शहर में मेरी शिकायत लगाओगे, वहां से सरकारें आके मुझे पकड़ के ले जाएंगे, तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा फिर एक काम मुझे करने दो, मुझे दो सजदे करने की इजाजत दे दो। उसने कहा ठीक है कर लो। सजदे में गए हैं, या मुगीथु अगिसनी, या मुगीथु अगिसनी, या मुगीथु अगिसनी, ए फरियाद रस मेरी फरियाद रसी कर, मेरी फरियाद रसी कर, या फरियाद रस मेरी। हमने तो गौस किसी और को बनाया है ना, गौस तो अल्लाह ताला है। हम कहते हैं गौसे आजम सबसे बड़ा फरियाद रस, फरियाद सुनने वाला, फरियाद पूरी करने वाले तो इनको बनाया हुआ है, अब्दुल कादिर जीलानी को रहमतुल्ला अलैह। उनका अकीदा तो ये नहीं था ना, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं ये कहते थे कि वो गौस है। हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मती को गौस बना दिया। तो गौस तो अल्लाह ही है। तो या मुगीस अगिसनी, ए गौस तू मुझे, ए फरियाद रस तू मेरी फरियाद रसी कर। यहाँ ये पुकार रहे हैं और सर उठाया सज्दे से, तो देखा तो डाकू जो है ना वो मरा पड़ा, पास एक नौजवान खड़ा हुआ। पूछा तुम कौन हो? कहा कि मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं। जब तुमने पहली दफा कहा या मुगीसु अगिसनी, तो अल्लाह ताला ने इस पुकार को बुलंद किया आसमानों तक और फरिश्तों में खलबली मच गई। और हर फरिश्ता ये कह रहा था कि अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं जाऊं और मैं जाके इसकी मदद करूं। हर फरिश्ता ये पुकार रहा था, अल्लाह अगर तूने इसकी मदद करने का फैसला किया, इरादा किया, तो अल्लाह मुझे इजाजत दे। तो अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया, तो मैंने इस डाकू को ढेर कर दिया। देख लेना इंसान की जो सच्चे दिल से दुआ होती है वो कहां तक पहुंचती है। फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। वो बात हमारे अंदर अगर आ जाए ना, ये ईमान, तो आज भी फरिश्ते उतर सकते हैं। हम कहते नहीं अल्लाह तो बड़ी दूर है और हम उसको कैसे पुकारे, हम तो वसीला जब तक नहीं बनाएंगे। देखो सीढ़ी चाहिए होती है किसी तक पहुंचने के लिए, वजीर तक पहुंचने के लिए। वो वजीर तो इंसान है, इसलिए उस तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी चाहिए, कोई चौकीदार, कोई क्लर्क को आप कहते हैं तो वो आगे जाता है। अल्लाह ताला को तुमने इंसानों की तरह समझ लिया, वो तो समीह और बसीर है। वजीर तो तुमसे दूर है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं करीब हूं तुमसे, फिर भी जाके उनके पास चल के जाते हैं। या फिर ये अकीदा रखते हैं कि यहाँ पे जो दुनिया से जा चुके हैं वो हमारी यहाँ पे मदद करे, या सरुल्ला मदद, या अली मदद, या अली मदद तो बहुत आम है, या अली मदद, या गौस मदद, किससे मांगा जा रहा है इसमें? कहते हैं हम नहीं अल्लाह से ही मांगते हैं ना, हम तो नहीं किसी और से मांगते। ये किससे मांगा जा रहा है, या अली मदद किससे मांग रहे हैं आप? उसका तर्जुमा तो करें, इतना तो आता ही होगा ना, या गौस मदद की क्या मतलब है इसका? तो ठीक है, दुआ के अंदर जो वसीले की इजाजत है वो भी वो वसीले की इजाजत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। उतनी खुद ही वसीलों की तर्जमे करके खुद ही बना लेना। तो इबादत, ये भी इबादत है, इसलिए कि दुआ जो है वो इबादत है, बल्कि मुखल इबादत है, इबादत का मगज है, असल जड़ है इबादत की, इबादत का जिस्ट है। अगर दुआ ही आपने किसी और से मांग ली तो किसी और की इबादत कर ली। तो इबादत के तो सारी मरासिम अल्लाह के लिए खालिस करनी। जो ये कहते हैं कि हम दुआ तो अल्लाह से करते हैं मगर इनके जरिए से करते हैं, तो यही तो मुशरिकीन भी कहते थे कि ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। सूरह जुमर आयत 3 निकाल के देख ले, मुशरिकीन के बारे में क्या कहा गया। तो तौहीद का चैप्टर ना बहुत क्लियर है, ऐसी कोई इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है। وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، और नहीं कोई भी बस्ती मगर हम उसको हलाक करने वाले हैं कयामत के दिन से पहले। कयामत के दिन से पहले इसको हलाक करने वाले हैं। ये कौन सी बस्ती की बात हो रही है जहां पे शिर्क होता है? हम उसको हलाक करने वाले हैं कयामत से पहले, या औ मुअज्जिबुहा, या फिर हम उसको अजाब देने वाले हैं, उसके ऊपर अजाब आने वाला है। यानी वो बस्ती, ऐसी बस्ती तबाहो बर्बाद होके रहेगी है। उनको भी वार्निंग दी जा रही है मुशरिकीने मक्का को। और ये भी हमें पता चलता है कि शिर्क वाली बस्ती को अल्लाह ताला हलाक कर देगा या फिर उसको सजा देगा। या तो कोई आसमानी आफत ऐसी आ जाएगी, कोई अजाब ऐसा आएगा जैसे बीमारियां हैं या किसी और कौम का गलबा है या उनका जवाल है या तंगियां हैं, ये सब में से कुछ भी आ सकता है। दुश्मन का तसल्लुत है, ऐसा सख्त अजाब का आना, ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, ये अल्लाह के पास किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये अल्लाह का फैसला है कि ऐसा हो के रहेगा। और आज आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं ना जमीन के नीचे से कितनी बस्तियां हैं, उनके खंडरात हैं, उनके ऊपर कैसे अजाब आए, कैसे वो हलाक कर दी गई। कुछ का जिक्र हमें कुरान में मिलता है, बहुत सारियों का नहीं मिलता, अल्लाह ताला ने मिटा दिया उनको। तो आम कानून यही है। और दूसरा इसके अंदर ये है कि कयामत की तबाही से पहले मिटा दिया जाएगा, जो बड़ी जंग होनी है मलहमतुल कुबरा, जिसमें इतनी तबाही होगी, इतना खून खराबा होगा कि एक कौवा एक परिंदा उड़ना शुरू करेगा और उड़ता उड़ता गिर के मर जाएगा, उसको जमीन पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी जमीन पे लाशें होंगी। अल्लाह ताला माफ फरमाए। वमा मनाना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज्जब बिहल अव्वलून, और नहीं रोका हमको कि हम भेजें आयात। आयात से मतलब है यहाँ पे मोजजात, कि हमें किसी और चीज ने रोका नहीं है मोजे भेजने से सिवाय एक बात के, वो क्या है, अन कज्जब बिहल अव्वलून, कि पहलों ने भी तो इनको झुठलाया, पहलों को कौन सा कोई फायदा हो गया मोजों से, ये लोग। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कहा था ना कई जगह पे मुशरिकीन मक्का के जो बात है वो बता के फिर जवाब दिया गया, कई जगह पे सिर्फ जवाब दिया गया, वो बात नहीं बताई गई। किस चीज ने रोका हमें कि हम मौजजा ना दिखाएं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये लोग मौजजा मांगते हैं, ये सफा पहाड़ी को सोने का बना दो, ये पहाड़ यहाँ से हटा दे, यहाँ पे हम काश्तकारी करें, यहाँ पे ये सारे पहाड़ सोने के बन जाए, आप कोई मौजजा तो दिखाएं, मौजजा तो दिखाएं। तो अल्लाह ताला फरमाता है हमने क्यों नहीं मौजजा नाजिल किया, इसलिए कि इससे पहले लोगों को भी तो कोई फायदा नहीं मौजे से हुआ, वो कौन सा ईमान ले आए। वह आते ही ना समुद्र नाका था बुबसीरा तन फजला मुंह भी, हाँ समुद को भी तो उनके मुंह मांगा मौजा दिखाया गया, जो ऊंटनी दिखाई गई मुबसीरा तन, वाजे इतना वाजे एक मौजा उनके सामने आया, मगर फजला मुंह भी हाँ उसको मार ही दिया उन्होंने, उसका जुल्म किया। तो कौमों को लास्ट में इंसानों की हिस्ट्री ये रही है कि कभी उनको मौजों से कोई ईमान नहीं लेकर आता कि मौजा देखेंगे तो हम आएंगे। आज भी कोई लोग कहते हैं वी नीड अ साइन, हमें कोई साइन चाहिए अल्लाह की तरफ से फिर हम ईमान लेकर आएंगे। तो साइन क्या, ऑलरेडी साइंस नहीं है इतने इतने साइंस हैं जो इस कायनात के अंदर बिखरे पड़े हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जो सबसे बड़ा मौजा दिया गया वो ये कुरान है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये कि कयामत के दिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि सबसे ज्यादा मेरी उम्मत होगी, सबसे ज्यादा, इसलिए कि ये मौजजा फॉर एवर का है ना, कयामत तक का ये मौजजा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। तो मौजजों ने काम नहीं किया, वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तखवीफा, और नहीं हम नाजिल करते मौजजे मगर सिर्फ डराने के लिए, निशानी तो खबरदार करने के लिए, उनको डराने के लिए होती है, हम भेजते हैं ताकि लोग ईमान ले आए कि अगर नहीं मानोगे तो अजाब आ जाएगा। लेकिन लोग नहीं मानते, फिर भी कहते रहते हमें बस मौजा चाहिए, मौजा देखेंगे तो मानेंगे। और आपको पता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी की कि ये पहाड़ सोने का बन जाए, तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा, उसने कहा अल्लाह ताला आपको सलाम भेजता है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आप कहते हैं तो ये पहाड़ सोने का बन जाता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई काफिर रहा तो फिर वो अजाब उसके ऊपर आएगा, इन लोगों पे वो अजाब आएगा जो जहन्नुम में मैंने किसी को नहीं दिया। यानी अगर मुंह मांगी निशानी देख के लोग काफिर रहे ना, तो बहुत बड़ा अजाब आ जाता है, जैसे समूद के ऊपर आ गया था। और अगर आप कहते हैं तो फिर आपकी उम्मत को मोहलत दे दी जाती है कि जब तक रूह नखरे में नहीं आ जाती उस वक्त तक उनके पास चांस है तौबा का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चीज को ऑप्ट किया था, और इस कुलना लगा इन्ना रब्बक अहाता बिन्नास, और जब कहा हमने तेरे लिए कि बेशक तेरा रब लोगों को घेरे हुए है, यानी अल्लाह ताला इंसानों को बल्कि सारी कायनात को घेरे हुए, वो पूरे यानी काबू में अल्लाह के हर चीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहकर मजबूत किया जा रहा है कि आप फिक्र ना करें इनकी बातों पर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोरल डाउन करने की कोशिशें करते थे, प्रोपोगंडास करते थे, डराते धमकाते थे, तो आप फिक्र ना करें। हमने आपको ये कह दिया कि आपके रब ने इन सब को घेरा हुआ। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि नबी अलैहिस्सलाम जब ताइफ गए तो वापस आके आप मदीना सॉरी मक्का में दाखिल भी नहीं हो पा रहे थे। आपको अमान चाहिए थे, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी का टाइम था। अल्लाह ताला हाता किए हुए, ये नहीं कि अल्लाह ताला अपनी जात के लिहाज से, अपनी इल्म, अपनी कुदरत, अपनी ताकत, अपनी खबर गिरी से, यानी ये एक बात बताती है कि कोई कहीं भाग नहीं सकता। वमा जालना रुय्या लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास, और हमने आपको जो मंजर दिखाया, कौन सा मंजर? रुय्या कौन सी? मेराज। और मेराज भी ख्वाब नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया, मेराज एक मोजा था। मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों के साथ हुई, इसी वजह से इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया उस मक्का की सोसाइटी में कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, जब आपने आके बताया, तो वो उन्होंने कहा कि ये तो मजनून है, क्योंकि ये तो ऐसी बातें करने लगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। एक रात में ही जाके भी वापस आ जाए, यहाँ पे महीनों का सफर हो जाए, उसको एक रात में इन्होंने तय कर लिया। तो ये तो उनके लिए एक आजमाइश बन गई। उन्होंने कहा हम तो मान ही नहीं सकते, और ईमान वालों का तो ईमान और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन दूसरों के लिए फितना बन गया। और शजरतल मलऊना फिल कुरान, और ये क्या मौजे से कम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए हो वापस आए? तो लेकिन ये भी उनके लिए उन्होंने नहीं मानना था, नहीं माने। और शजरे मलऊना कौन सा है? मलऊन दरख्त, असल में दरख्त मलऊन नहीं, उसको खाने वाले मलऊन होंगे, इसलिए दरख्त को कहा गया कि ये लानत ज़दा है, क्योंकि इसके खाने वाले लानत ज़दा है। ये वो दरख्त है जो जक्कूम का दरख्त, जिसको कुरान में कहा गया जो जहन्नमियों का खाना होगा, ये भी उनके लिए फितना बन गया, इसका जिक्र कुरान में भी आया। और जब अबू जहल ने जब इसका सुना था कि ऐसा दरख्त होगा, तो इतना मजाक उड़ाया कि आग के अंदर दरख्त, हमारे लिए खजूर और मक्खन लेकर आओ, यही जक्कूम है, ये खाओ इसको। अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो इस तरह मजाक हो रहा है। वनुख़व्विफ़ुहुम, और हम डराते हैं इनको, हम इनको डरा रहे हैं ताकि ये अपनी सरकशी छोड़ दे, ये कुफर छोड़ ले। लेकिन फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा, इससे इनको बजाय असर होने के और सरकशी बढ़ती है। बजाय इस बात को सोचें कि देखो अल्लाह ताला की ताकत है ना, आग के अंदर भी दरख्त होना, उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आग दरख्त को तो जला देती है। असल में अल्लाह ताला को समझा ही नहीं, जैसे वो है उसको समझा ही नहीं, इसलिए अपनी ही सोच के मुताबिक सोचा कि आग जला देती है दरख्त को, तो फिर कैसे दरख्त हो गया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो आग ने नहीं जलाया, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक इंसान ही तो थे ना, और आग इंसानों को जला देती है। जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो वही आग सलामती बन गई। तो आग के अंदर दरख्त रहना कौन सा मुश्किल काम है, ये समझना कौन सा मुश्किल बात है? लेकिन यही बातें कई लोगों के लिए फितना बन जाती हैं। अल्लाह ताला हमें हक को समझने की और हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इन आयात से हमारे ईमान को तकवीत देने का, हमें तकवीत लेने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला तौहीद पे हमेशा कायम रखे हम सबको। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة سنة.
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا